हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। सो भगवान के धाम में हर चीज़ भगवान की इच्छा से होती है। हम लोग कुछ प्लानिंग बनाते हैं और होता है भगवान की इच्छा से। तो इसलिए भानुखर लाने का आपको मेरे दिल में बहुत दिन से था, अचानक पूरा हो गया क्योंकि बस लेट आ रही है। द प्लेस इज कॉल्ड भानुखर और वृषभानुकुंड। ये भी वृषभानु महाराज का खुद का कुंड है, यहाँ पर वो खुद स्नान करते हैं और यहाँ पर राधा रानी भी स्नान करती है। यहाँ पर दूसरी जगह पर कृष्ण भगवान और उसका फ्रेंड भी स्नान करते हैं और यहाँ पर उनकी वाइफ भी स्नान करती है। इसलिए ये बहुत पवित्र स्थान है और इस स्थान की लीला बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर लीला है। वो लीला ऐसी है कि इस स्थान में जब राधा रानी अपने फ्रेंड्स के साथ में अकेले में स्नान करती रहती है तो कृष्ण भगवान दूर से पानी में आते हैं और अंडर वाटर जाते हैं। समझ में नहीं आता कहाँ से जा रहे हैं और अंडर वाटर जाके सीधे राधा रानी के ग्रुप के बीच में ऐसे ऊपर आते हैं। सबको सरप्राइज देते हैं, अरे अचानक कौन आ गया। और दूसरे टाइम पे क्या करते हैं, अंडर वाटर जाते हैं और राधा रानी के पाँव छूते हैं, गोपियों के पाँव छूते हैं। उनको समझता नहीं पानी में से कौन हाथ लगा रहा है। बहुत देर हाथ लगाते हैं, सबको चौकन्ना कर देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं, फिर अचानक ज़िप ऊपर आते हैं। ये आखिरी लीला है, बहुत सुंदर। तो ये कुंड का बहुत अच्छा जीर्णोद्धार रेनोवेशन किया गया, बट ये तो मेंटेनेंस लोग करते नहीं हैं। अच्छा टाइल लगाया, वेरी क्लीन मोटा टाइल्स, क्योंकि इंसानों को इसकी वैल्यू नहीं है इसलिए कबूतर खाना बन गया है पूरा। लेकिन फिर भी धाम जो है वो ऑलवेज दिव्य होता है। द होली प्लेस ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज डिवाइन। इवन एक्सटर्नली इट गेट्स लाइक वॉट एवर इट इज नाउ, स्टिल इंटरनली इट इज ऑलवेज ग्लोरियस एंड ऑलवेज डिवाइन। सो दोज हु हैव डिवोशन दे कैन अप्रिशिएट द डिविनिटी ऑफ दिस प्लेस। रेस्ट ऑल विल से व्हाट इज दिस गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है, इतना गंदा क्यों है, अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अभी इतना ये अच्छा दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, तो कृष्ण के टाइम पे कितना सुंदर होगा। इसके अंदर रोज राधा रानी स्नान कर रही है, मतलब राधा रानी और कृष्ण भगवान का चरणामृत है ये, उनको स्नान करके पवित्र हुआ जल है इधर। तो द ब्रज फाउंडेशन के हमारे एक मित्र हैं विनीत नारायण जी, उन्होंने इसको क्लीन करके बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पर ब्रजेश्वर महादेव का मंदिर भी है, मुझे ढूंढ के निकालना है, आप पता करेंगे थोड़ा बाद में। ब्रजेश्वर महादेव, मैंने कल कथा में बताया था ना, ब्रजेश्वर महादेव इसकी वृषभानु महाराज ने पूजा की थी, उनको कन्या प्राप्त होनी चाहिए इसलिए। तो अभी हम आपको नंदगांव की कथा बताएंगे। टेर कदम में आप गए थे ना, तो टेर कदम इतना सुंदर स्थान है, देखा ना आपने, बहुत ही सुंदर। उधर नेचुरल ऐसा पेड़ का मंडप बना हुआ है, टेंट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वेरी ब्यूटीफुल। तो वहाँ पर हमारे एक प्रमुख गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी। वी रीड ना लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, द ऑथर ऑफ दैट बुक ही स्टेड देयर एंड द बुक दैट वी टीच यू वॉज रिटन ओवर देयर। वेरी होली प्लेस। हमारे पी वी दोषी हॉस्पिटल के बुधवार के प्रोग्राम में हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन करके किताब पढ़ते हैं, बहुत सुंदर किताब है, छोटी सी किताब, उपदेशामृत उसका नाम है। तो उसका लेखन रूप गोस्वामी ने उधर किया है कुटिया में बैठकर। और भी बहुत सारे किताब लिखे हैं, ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, बड़े बड़े ग्रंथ वहाँ पर लिखे हैं उन्होंने एकांत में बैठकर। और रूप गोस्वामी जी जब उनका मंदिर वृंदावन में बन रहा था राधा गोविंद जी का, राधा गोविंद जी एक पत्थर में से प्रकट हो गए। कृष्णा केम इन द ड्रीम ऑफ गोस्वामी जी, ही टोल्ड हिम दैट आई एम इन अंडर द माउंटेन हियर, प्लीज़ पिक मी आउट। तो सुबह उठकर उन्हें ब्रजवासियों को लेकर वो मंदिर को, मूर्ति को निकाला वहाँ से। उस जगह का नाम है योगपीठ, वो वृंदावन में है। फिर वो पेड़ के नीचे बैठकर उनकी सेवा करने लगे। तो एक दिन अकबर के राजा, अकबर के सेनापति, उसका नाम है मानसिंह, राजा मानसिंह, वहाँ पर आए। वो रूप गोस्वामी के शिष्य थे, ही वॉज डिसाइपल ऑफ रूप गोस्वामी। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके लिए कुछ सेवा करना है हमको। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि हम तो सन्यासी है, हाँ मैंडिकेंट मंक, हमको कुछ ज़रूरत नहीं कुछ चीज़ की, आपको कुछ सेवा करना है तो गोविंद जी की सेवा करो। तो उन्होंने गोविंद जी के लिए बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाने का प्लानिंग किया। और जब वो गोविंद जी का मंदिर बन रहा था, उस समय रूप गोस्वामी यहाँ रहने को आए थे। When the site was under construction there, तो उसके बाद में 7 मंजिल का गोविंद जी का मंदिर बना। लेकिन तब तक गोस्वामी जी इधर ही रहे, उन्होंने यहाँ पर राइटिंग किया। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पे 9 दिन तक शिक्षा दिया था। शिक्षा मतलब ट्रेनिंग दिया था, उपदेश दिया था। तो रूप गोस्वामी को जो भी मिला चैतन्य महाप्रभु की तरफ से, रूप गोस्वामी ने अपनी सारी किताबों में लिखा उसको। और उनका जो किताब है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, उसको डिवोशनल ट्रीटाइज माना गया है। द एसेंस ऑफ डिवोशन इन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज गिवन इन दैट बुक, नेक्टर ऑफ डिवोशन। दैट इज अ वेरी बिग बुक, वॉट वी आर रीडिंग इज अ स्मॉल बुक, दैट इज कॉल्ड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृता। तो इस तरह से रूप गोस्वामी का वो भजन कुटी है जहाँ पर आप लोग गए थे। और वो जगह जो है जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, उधर क्या होता था, उधर एक बड़ा केदम का वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष। हमने जो दर्शन किया था वो बहुत लंबा वृक्ष था। तो उस पेड़ पे कृष्ण भगवान शाम को चढ़ते थे। दिन भर क्या करते थे, गैया चराते थे, है ना। उनके पास में 108 ग्रुप्स ऑफ काउज, 108 गाय के झुंड थे उनके पास, सफ़ेद, ब्राउन, ब्लैक और एश कलर, ऐसे बहुत रंग के उनके पास गाय के झुंड थे। और ऐसे कहते हैं कि 25 उनके पास अलग अलग टाइप के झुंड थे। और भाई उसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और कुछ गाय का नाम था मृदंग मुखी, उनका चेहरा मृदंग की तरह था। कुछ गाय का नाम था तिलकिनी, उनके सर पे वाइट तिलक हुआ करता था, नेचुरल ना, नेचुरल तिलक। सो तिलकिनी ग्रुप था, एक मृदंग मुखी ग्रुप था, ऐसे अलग अलग ग्रुप थे उनके गाय के। और सारे गाय को कृष्ण भगवान उंगली पे गिनते थे। कितनी गाय थी गाय की, कृष्ण नंद भगवान नंद महाराज की 9 लाख गाय थी उनकी। सारे गाय को नाम दिया था। अब समझो आप लोग 9 लाख लड़की यहाँ पर आ गई, तो फिर भी हर एक का लड़के का नाम होगा ना, कैसे लड़की बोलेंगे उनको, कुछ लोगों का नाम, बाकी सबको लड़की लड़की बोलेंगे, ऐसा होता है क्या। एवरी गर्ल विल हैव नेम ना, एवरी बॉय विल हैव नेम। वैसे हर एक गाय को नाम था, हर एक गाय को भगवान नाम से पुकारते थे और नाम से जानते भी थे, बहुत प्रेम था उनका गाय के ऊपर। रोज़ सवेरे वो गाय को चराने के निकलते थे और दिन भर दूर दूर वनों में चरते थे गाय को लेकर। और शाम को जब लौट के आते थे तो सब लोग गायों को लाने के पहले वो उस ट्री के पास आते थे और उस ट्री पे चढ़ते थे और टॉप मोस्ट ब्रांच पे जाके बैठते थे, फिर अपनी मुरली निकालते थे और मुरली बजाते थे। उनके मुरली के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट होल्स हैं, और हर एक होल में से जो सुर निकलता है उसका अलग अलग पर्पज़ है। जैसे फर्स्ट सुर जब निकालते हैं ना, फर्स्ट व्हाट यू कॉल नोट, तो आसमान में जितने भी देवता हैं वो अपना काम भूल जाते हैं और पागल से हो जाते हैं। जब सेकंड नोट बजाते हैं तो यमुना जी रुक जाती है और उल्टा बजने लगती है, और सन एंड मून स्टार्ट ट्रैवर्सिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे बिकम मेस्मराइज्ड। तो जब सिक्स नोट बजाते हैं, सिक्स नोट वो पर्पसफुली वो काऊ के लिए है। दो पर्पज़ है उसके, एक पर्पज़ है काऊ और दूसरा पर्पज़ है उससे पत्थर पिघलने लगते हैं, द स्टोन स्टार्ट मेल्टिंग सिक्स नोट बजाने से। तो सिक्स नोट बजाते हैं और सारी गायों को बुलाते हैं। अभी सिक्स नोट जब बज रहा है तो एक ही नोट बज रहा है, लेकिन ट्रेसियामा को ट्रेसियामा का आवाज़ आ रहा है, आपको आपका आवाज़ आ रहा है, गिरीश को गिरीश का आवाज़ आ रहा है। तो एक नोट बजेगी, ही इज़ प्लेइंग वन नोट, बट एवरी काउ ही इज़ हियरिंग हर नेम इन दैट नोट। इट इज़ लाइक कृष्णा कॉलिंग दैट काउ ओनली फॉर दैट काउ, शी डजंट अंडरस्टैंड ही कॉलिंग एवरीबडी। तो एवरी काउ विल हियर ओनली हर नेम इन दैट नोट, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द फ्लूट। मतलब हर एक गोपी को, हर एक गाय को उसकी ही आवाज़, उसका ही नाम सुनाई पड़ेगा कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो वो तुरंत कान ऊपर करेंगे, पूँछ ऊपर करेंगे और भाग के आएंगे, कहाँ मुरली बज रही है, कहाँ मुझे पुकारा जा रहा है। और सब लोग ऐसे मुँह करके देखेंगे और ऊपर कृष्ण भगवान बैठे हैं। कुछ काउज ऐसे हैं कि उनका नाम सुनते हैं लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स देते नहीं हैं, उधर ही रहते हैं, बाकी सारे काउज भाग के आ जाते हैं और पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। तब कृष्ण भगवान उतरते हैं पेड़ के नीचे और खुद जाकर जो नहीं आए हैं उस गाय को अपने हाथ से लेके आते हैं। दे वॉन्ट मोर अटेंशन, ऐसे जनरल बुलाने से आते नहीं हो। तो कृष्ण भगवान जाकर उनको अपने हाथ से प्रेम से थपथपा कर ऐसे चलो 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 करके लेके आते हैं, और सबको इकट्ठा होने के बाद में फिर कृष्णा मुरली हाथ में लेते हैं और मुरली बजाते हुए वहाँ से नंदभवन जाते हैं। कितना दूर है, आप गए ना अभी? 2-4 किलोमीटर, ऐसा दूर नहीं है। वो लास्ट कलेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे उनको कलेक्ट करके फिर कृष्ण भगवान अपने घर पे आते हैं। और वहाँ पर घर पे जब आते हैं तो उधर दरवाजे पे माता पिता गोपी सब खड़े रहते हैं, हाथ में लैंप लेके खड़े रहते हैं, मिठाई आरती लेके खड़े रहते हैं। सुबह जब नंद बाबा और यशोदा माई उनको छोड़ते हैं ना गाय चराने के लिए, तो उनको श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाते हैं, अगुरु लगाते हैं, बहुत सेंटेड आइटम लगाते हैं, ड्रेस करते हैं, ऑर्नामेंट पहनते हैं, खाना खाने को देते हैं, साथ में मक्खन खिला के लेके जाते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं, और चले जाने के बाद में फिर दिन भर यशोदा माई एक ही काम करती है, बार बार खिड़की में देखती है सूरज कितना नीचे आया, अब तक नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इतना धीरे क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहे हो, व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दिस। हाँ, जब सूरज नीचे आएगा तभी वापस आएगा ना वो। तो दिन भर आँख में आंसू लेकर, ऐसा कहते हैं कि यशोदा माई के आँखों में से आंसू कभी सूखते ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली शी इज शेडिंग टीयर्स, कॉन्स्टेंट प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। हमारे एक बॉम्बे में भी हमने देखा है कि कोई नर्स है आप जैसी, शादी हो गई उसकी, उसको बेबी, शादी होने का बेबी हो गया है, तो 3 महीने का उसका मैटरनिटी भी ख़त्म हो गया है, अभी वो ड्यूटी पर आने लगी है, तो जब ब्रेस्ट फीड का टाइम होता है ना तो उसको बेटे की याद आती है। वो घर पे ब्रेस्ट फीड निकाल के रखा है उसने, लेकिन उसको ब्रेस्ट फीड जब करती थी घर पे छुट्टी पे, तो ड्यूटी पे उसको याद आती है अपनी ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम हो गया बेबी का, क्या करती होगी बेबी, तो उस टाइम उसमें ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है। इस वॉट इज एवरीबडी एक्सपीरियंस दैट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की वजह से बच्चे की याद आते ही आंखों से आंसू और ब्रेस्ट से दूध निकलता है। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि याद आते ही आंसू आने चाहिए। तो वो दिन भर अपने बेटे की याद करके उसके आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है, और वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे अंदर जाती है, वापस खिड़की में देखती है, अंदर जाती है वापस खिड़की में देखती है, कभी आएगा कभी सूरज ढलेगा। तो बाद में फिर सूरज एक बार नीचे आ जाता है आफ्टरनून के बाद में, फिर वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे आगे पीछे, अभी पूरा क्यों नहीं आया, पूरा क्यों नहीं आया, पूरा क्यों नहीं आया, भाग रही है। जब लास्ट में वो नीचे आता है सूर्य, तो इसको रहा नहीं जाता है, वो क्या करते हैं नंद बाबा से बोलते हैं चलो 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 अभी ऊपर नहीं बैठेंगे, अभी नीचे जाएंगे, क्योंकि पहाड़ तो ऊंचा है ना, वो तो पहुंच जाएगा फिर भी ऊपर आने का और टाइम लगेगा, उतना देर में रुक नहीं पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू वेट टिल ही कम्स अप, आई विल गो डाउन टू रिसीव हिम। तो नीचे एक जगह है उसका नाम है यशोदा कुंड, वो देखा क्या आपने? ओके, यशोदा कुंड में बचपन में एकदम छोटा था ना बेबी, तभी यशोदा माई कृष्ण भगवान को स्नान करती थी वहाँ पर, कृष्ण और बलराम को। जब बड़े हो गए तो वो शर्माने लगे, इसलिए उन्होंने उनके लिए अलग कुंड बना दिया, फिर कृष्ण बलराम वहाँ पर स्नान करके कपड़ा पहनने के लिए वापस आते थे, वो भी भगवान भी इंसान है ना, जब बड़े हो गए तो उनको शर्माने लगे वो। तो यशोदा कुंड के पास में एक जगह है, उसका नाम है नंद बैठक, नंद बैठक मतलब वहाँ पर आके नंद बाबा और यशोदा बैठ जाते हैं कि सबसे आए पहले आएंगे तो इधर ही आएंगे, इधर से ही पहले मिलेंगे उसको। तो सभी गोपियों को हाथ में थाली लेकर दीपक उसमें मिठाई सब फूल सब लेके रेडी रखते हैं और देख रहे हैं कभी आएंगे कभी आएंगे। वहाँ पर वो मुरली बजा रहे हैं ना, सब गोपियों को सब गायों को बुला रहे हैं, तो सुनाई पड़ता है कि आ गया है अभी, अभी आने वाला है, सब लोग बड़े एंग्जाइटी में बैठे हैं, अभी आएंगे अभी आएगा अभी आएगा। फिर कृष्ण बलराम जो आते हैं तो भाग के दोनों जो है बाबा के गोद में घुस जाते हैं, ऐसे बाबा ऐसे बैठे हैं पलटी मारकर, तो भाग के आते हैं एक गोद में कृष्ण बैठते हैं, एक गोद में बलराम जी बैठते हैं, और कृष्ण का राइट लेग ऐसा और बलराम जी का लेफ्ट लेग ऐसा क्रॉस में बैठते हैं, और दोनों चालू करते हैं बताना आज ऐसा हुआ आज वैसा हुआ, तो ये बोल रहे फिर ये बोल रहे, बाबा इसका सुन रहे इसका सुन रहे इसका सुन रहे इसका सुन रहे, बीच में बाकी सब लोग बोल रहे हैं, बच्चे लोग भी बोल रहे हैं बाबा ऐसा हुआ ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो भी बोल रहे ये बोल रहे बाबा ऐसे सुन रहे ऐसे सुन रहे, सबका सुन रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है उनको। बहुत देर तक वहाँ पर बैठ के बच्चों की बातें सुनते हैं, उनकी आरती उतारते, उनको मिठाई खिलाते हैं मक्खन खिलाते हैं, फिर सब लोग वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी अपनी गाय लेकर सब फ्रेंड लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और फिर ये लोग ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाके उनको मैया स्नान कराती है शंख से, कौंछल, कोई कौंछल भर के देता है, फिर वो स्नान करते हैं, कैसे मिल्क, फिर योगर्ट, फिर हनी, फिर वाटर, सब बहुत सुंदर स्नान करते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं, फिर माखन मिश्री खिलाते हैं, फिर मैया उनको लोरी सुनाते हैं, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी, माखन और मिश्री का तुझे भोग लगाऊंगी, माखन और मिश्री का तुझे भोग लगाऊंगी, सो जा सो जा रे लाल सो जा, तुझे मैया सुलाती है, आप मत सोना आप खाली सुनना बोलो सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे, सो जा सो जा रे लाल सो जा। तेरी मैया सुलाती है। जब म्यूजिक सो स्लो हो जाता है तब लाला सो जाता है। ऐसा सुंदर लाइफ है इधर का। रोज सुबह फिर मैया सुबह आती है फिर जगाती है उसको गीत बोल कर। ऐसा नहीं है पानी लेके आते हैं, उठे उठ जा क्या हो गया, इतना टाइम हो गया अभी गाय लेके जाने का है, सो रहा है अब तक तू, हाँ बड़ा शैतान हो गया, उठो अभी। ऐसा नहीं, फिर गीत गाएगी, हाँ फिर वो उठेगा, जब उठेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले मुरली बजाएगा, तुरंत मुरली दिखा लेगा। क्यों बजाएगा, सारे फ्रेंड्स को बोलेगा उठो अभी जाना है अपने को, सब लोग उठ जाएंगे, सब लोग फ्रेंड जहाँ जहाँ बैठे हुए अपने अपने घर में सब उठेंगे, फटाफट स्नान करेंगे और रेडी हो जाएंगे, तब तक तो ये भी रेडी हो जाएगा, उसको माखन मिश्री खिला के फर्स्ट क्लास, गाय भी रेडी हो जाते हैं, गाय भी सुनती है मुरली, अरे जाना है, तब उठ जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं अपने अपने ग्रुप के अंदर एकदम सिस्टमेटिकली, फिर सबके बीच में बहुत सुंदर कृष्ण बलराम मुरली बजाते हुए आगे चलते हैं। रोज का सीन है, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी मधुवन जा रहे हैं, कभी तालवन जा रहे हैं, कभी कुमुदवन जा रहे हैं, कभी खदीरवन जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो जो चेर कदम है ना, बहुत पावरफुल जगह है वो, वहाँ पर रोज शाम को गैया इकट्ठा होती है और वहाँ से गीत गाते हुए घर चले जाती है, रोज शाम को वहाँ बैठकर भगवान बंसी बजाते हैं, इतना सुंदर जगह है वो। तो बचपन जब भगवान छोटे थे तो वो गाय के बछड़ों को चराते थे, स्मॉल स्मॉल बेबीज़ को, तो भी छोटे थे और बेबी छोटी थी, तो उसका रूल था ज़्यादा दूर नहीं जाना है। मैं जब यशोदा बोलती थी कि जब मैं चढ़ूंगी नंद भवन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वहाँ से देखूंगी तो मुझे दिखना चाहिए उतना ही दूर जाना है, तो दिन में 50 बार जाएगी और देखेगी किधर है, बोले हाँ खजीर वन में है, अच्छा हाँ कुकिला वन में है, अरे हाँ हाँ इधर पीछे ही गया हुआ है, उसके बाहर जाना नहीं चाहिए। वो बचपन का रूल था, वो 5 साल तक चला उसका रूल, बछड़े और बेबी कृष्णा बेबी बलराम। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बच्चों ने ना कृष्ण भगवान को बलराम जी को बहुत चिढ़ाया, तू ना छोटा ही रह गया, बाबा को तुझ पर विश्वास नहीं है इसलिए अब तक बछड़े ही दिए तेरे को, अगर विश्वास होता ना तेरे ऊपर तो कब की तेरे को बड़ी गाय दी होती चलाने के लिए, लेकिन देख तेरे को अभी बच्चा ही दिया है, अब तक बच्चे के ऊपर कोई दिया ही नहीं है। तो कृष्ण सोचने लगा हाँ रे इतना दिन हो गया मैं चला रहा हूँ, एक्सपर्ट हो गया अब चलाने में, फिर भी बाबा ने बड़ी गाय नहीं दिया मुझे अब तक, मैया ने भी नहीं बोला, बाबा ने भी नहीं बोला। तो उस दिन बहुत चिढ़ाया बच्चों लोग ने और कृष्णा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया कि बाबा को मेरे पे फेथ नहीं है, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और फिर भी बाबा मुझे छोटी गाय दे रहे हैं, मतलब मैं तब बच्चा ही हूँ अब तक मेरे को बाबा पे बाबा मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। उस दिन बहुत उदास हो गया वो दिन ना सब लोग नीचे आए उसको रिसीव करने के लिए, वो रिसीव विसीव कुछ नहीं किया उसने, सीधा गया ऊपर अकेला और बिस्तर पे मुंह नीचे करके सो गया। बाप का बच्चा जब नाराज़ होता तो क्या करता है, उल्टा मुंह करके सो जाता है, सोता नहीं है, सोने का बहाना करता है। आप आएंगे बुलाने के लिए तो ऐसा बोलता है, फिर से आए तो बोलता है, खाना खाओगे ऐसा बोलता है। वो दिन ना स्नान हुआ ना गीत गाना हुआ ना लोरी हुई ना मखन मिश्री हुआ, कुछ नहीं, सो गया सीधा। अच्छा वो जब यहाँ से आ रहा था ना तब बच्चे चिढ़ा रहे थे उसको, जंगल में दिन का समय था ना, तो उधर क्या हुआ, उधर घर पे माता पिता डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो अपना कृष्णा बलराम बड़े हो गए हैं उनको भी बड़ी गाय देना चाहिए, ये डिस्कशन घर पे हो रहा है और वहाँ पर बच्चे चिढ़ा रहे हैं, और घर पे डिस्कस हो रहा है कि अभी कल से उनको आप अच्छा मुहूर्त है अष्टमी का, उसको कहते हैं गोपाष्टमी, वो कार्तिक महीने में आती है, कार्तिक महीने में गोपाष्टमी आती है, बहुत सुंदर उत्सव है वो। तो सप्तमी के दिन ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, सप्तमी के दिन बच्चे लोग चिढ़ा रहे हैं उसको, तो घर पे वो लोग डिस्कस करते हैं और तय करते हैं सब लोग मिलकर, बड़े बड़े माता पिता सब बच्चों के, कि हमारे सब बच्चे बड़े हो गए अभी, अभी हम लोग सबको बाप बेबी जो है वो भेजेंगे और बड़ी गाय को भी भेजेंगे। तो बड़ी गाय सुनती है, अरे अभी हमको जाने को मिलेगा कृष्ण के साथ, वाह वाह मजा आ जाएगा, वो सब बड़ी गाय खुश हो जाती एकदम। तो जब लौट के आते तो उनको पता नहीं है कि इधर क्या डिसीजन हो गया है, नाराज़ होकर सो जाता है। अगले दिन सबके घर में न्यूज़ फैल गया है कि अभी कृष्ण भगवान बलराम जी को अभी बड़ी गाय देने वाले हैं चराने के लिए। और बड़ी गाय को लेने का नियम क्या होता है, दूर दूर गांव तक जाना पड़ता है, दूर दूर वन में, वो बड़ी गाय तो थोड़ी यहाँ वहाँ चलेगी, उसको दूर तक चलना पड़ता है, उसका नियम है ना, यू हैव टू ग्रेस द काउज लॉन्ग डिस्टेंस, देन ओनली दे विल गिव गुड मिल्क एंड दे विल बी हेल्दी ऑल्सो। काउ मतलब यू कांट कीप काउ इन वन प्लेस, काउ हैज़ टू मूव, काउ हैज़ टू ग्रेस। तो कृष्ण भगवान को पता नहीं है, सबको पता चल गया, सबकी गाय भी रेडी हो गई, सुबह हो गई, मुरली नहीं बजी उस दिन, मुरली का आलम नहीं बजा फिर सब लोग उठ गए, क्या हुआ मुरली नहीं बजी, सब लोग रेडी होके आ गए, सब जमा हो गए, और सारी जो गाय है 9 लाख वो भी जमा हो गई उधर। कृष्ण अभी तक बिस्तर में ही है, माता लोरी बोलकर सुबह सुबह गाना गाकर थक गई वो, तो क्या करे, डिस्कस करते क्या करे, अभी उठता ही नहीं है वो, नाराज़ हो गया बहुत, ना खा रहा है ना पी रहा है, उल्टा मुँह करके सो गया है। तो नंदबाबा बोलते जा कान में उसके, बोल दे बड़ी गाय देने वाले तेरे को आज, उठ जा अभी तू। जैसे ही सुनता है बड़ी गाय देने वाले, झट से उठ के खड़ा होता है और फटाफट एक्सप्रेस बेदिंग करता है, एक्सप्रेस स्नान, क्विक स्नान, और रेडियो के आता है। उस दिन का नाम क्या है, गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी के दिन सारी गाय सज सज कर तैयार हैं, वेट कर रही है कि अभी जाएगी हम कान्हा के साथ। तो आते बाहर कृष्ण बलराम सज धज के, जब बच्चों को लेकर जाते थे ना पास पास में, तो वो नंगे पैर जाते हैं ना, दूर इतना पास ही है, अभी दूर जाना है, तो मैया दो जोड़ी जूता लेके आती है, 2 pairs of shoes, एक नंद कृष्ण भगवान के लिए, एक बलराम के लिए, और 2 छतरी लेके आते हैं, एक कृष्ण के लिए छतरी, एक बलराम के लिए। बोलते ये लो, बोले क्या करना है इसका, बोलते अभी दूर जाओगे ना धूप लगेगी, रास्ते में कांटे होंगे, पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, क्या क्या होगा, पैर पे लगेगा ना, तो जूता पहनना है आपको। बोला अच्छा, तो आपके पास सभी गाय के लिए जूता है, सभी गाय के लिए कैसा लसी लेके आ सकते हैं, 9 लाख गाय के लिए कितना जूता लगेगा, अच्छा है, अच्छा है, इनके घर की गाय 2 पाए वाली है, हमारे घर भी 4 पाए वाली होती है, हर मैं लेक्चर में प्रश्न पूछता हूँ, हर एक मुझे 18 लाख उत्तर देता है क्योंकि लोग ध्यान से सोचते नहीं है, ऐसा मैकेनिकल सुनते रहते हैं, प्रेम से सुनना चाहिए। तो वो मैया बोलती है मेरे पास 36 लाख जूता नहीं है, ना 9 लाख छतरी है, 2 ही है बस, लेना है तो ले लो। बोलते अगर मेरे गाय के लिए तुम्हारे पास जूता नहीं है, छतरी नहीं है, तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा और छतरी नहीं लूँगा। कितना प्रेम है देखो गाय के ऊपर, फॉर द सेक ऑफ काउ, अभी काउ का पैर कैसा रहता है, यू नो हार्ड इट इज़ ना, उसको तकलीफ नहीं होता है, फिर भी इतना प्रेम करते हैं काउ के ऊपर। बोलते नहीं मैं नहीं पहनूंगा उसको, मैं भी नंगे पैर चलूंगा। अभी गाय से सुन रहे हैं ना, बड़ा ऊपर कान करके सुन रहे हैं, अरे कान्हा हमारे लिए जूता नहीं पहनेगा, हमारे पाँव तो बहुत सख्त है, हमारे जो पैर है ना, ये क्या बोलते हैं, फुट, बहुत सख्त है हमारे, पत्थर जैसे बने हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं होती हमको, उसके पैर तो मक्खन जैसे मुलायम है, उसका ऐसा हाथ लगा ना, ऐसा ऐसा हाथ लगा ना तो भी लाल होता है, इतना पैर मुलायम है उसका, मक्खन जैसा मुलायम, तो कैसा होगा फिर। चलो हम जाते हैं सब में, सब जगह जाते हैं ब्रज में, सब जगह जाते हैं, और जितने भी पत्थर कंकड़ जितने भी कांटे हैं सबको कूट कूट कर पाउडर बना देते उसकी, मतलब जहाँ पर भी चलेगा तो पैर में किधर भी कष्ट नहीं होगा। आप लोग पाउडर लगाते हैं, पाउडर टेलकम पाउडर कैसा रहता है, एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम रहता है ना, कभी भी हाथ लगे तो मुलायम लगता है एकदम रेती। तो वैसा सभी गाय ऑल 4 directions में जाके कूट कूट कर अपने पैर से सारे पत्थर कंकड़ कांटे जितने भी है सबको पाउडर बना देते हैं। अभी आप, मैं पूछता हूँ सब जगह क्यों बनाया उन्होंने ऐसा, उन्हें पता नहीं कहाँ जाने का दिल करेगा उसका, ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, किधर भी जाएगा सब जगह पर तैयार होना चाहिए ना सब कुछ, वो कहीं भी मुड़ आएगा तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन हमको तैयार होना चाहिए। तो जब डिस्कशन हो रहा है तब वो जो फाइनल होता है कि मैं नहीं पहनूंगा, उस समय सारी गाय जो है पूरे ब्रज में जाकर सारा जगह जो है एकदम पत्थर का कंकड़ पाउडर बना देते हैं और वापस आकर खड़े हो जाते हैं। इसे फिर कृष्ण भगवान निकलते हैं, निकलने के पहले कृष्ण भगवान और गाय का डिस्कशन होता है कैसे होना चाहिए, आज पहला दिन है कुछ नियम बनाना चाहिए, हर चीज़ नियम से होनी चाहिए ना, नहीं तो तुम्हारे मन से करेगा तो यात्रा कैसी होगी हमारी, यू हैव टू बी ऑलवेज टुगेदर इन वन प्लान। तो वो कहते हैं आज से हम लोग फर्स्ट डे जा रहे हैं ना, अभी आगे रोज़ जाएंगे, तो कुछ अपना रूल होना चाहिए। रूल रूल क्या होना चाहिए, क्योंकि ब्रज के अंदर मैंने क्या बताया, ब्रज का डिफिनेशन क्या है, जहाँ पर गाय निर्भय होकर विहार करती है। निर्भय होना मतलब प्रेम भी प्राप्त होता है ना, निर्भय हो जब आदमी को डर लगता नहीं तो उसके मन में प्रेम भी कृष्ण के लिए है ना, तो प्रेम से उनका जो है ना अडर्स, मिल्क अडर्स, दे आर ऑलमोस्ट टचिंग द ग्राउंड, उनके बॉडी से जमीन तक टच करते वो गाय के थन, और हमेशा गाय भी जो है वो कृष्ण के बारे में विचार करती रहती है, तो इसलिए उसके थन से बूंद बूंद दूध भी टपकते रहता है कॉन्स्टेंटली। जैसे माता को जब दूध पीने का समय आता है, बच्चे को पिलाने का समय आता है, तो उसका भी दूध निकलता है ब्रेस्ट से, वैसे गाय के स्तन से कॉन्स्टेंटली ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क जो है वो बहते रहता है। अभी सैंड कैसा हो गया है, कैसा कर दिया काऊ ने, तो सैंड कैसा बना दिया है, पाउडर, उसका दूध गिर गया तो क्या होगा, एक तो ठंडा ठंडा हो जाएगा और मक्खन जैसा मुलायम हो जाएगा। तो पाउडर में आप दूध डाल के देखना, अपना फेस पाउडर है ना, थोड़ा मिल्क डाल के देखते मलम मुलायम हो जाएगा वो। तो वैसे इनके दूध से वो जो पाउडर जैसी ज़मीन है वो मक्खन जैसी मुलायम बन जाती है, फिर वो चलेंगे उसके ऊपर, अगर मुलायम सॉफ्ट सैंड के ऊपर जो दूध से गीली भी हो गई है इस पर कोई चलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, इफ यू वॉक ऑन अ सॉफ्ट वेट पाउडर लाइक सैंड व्हाट विल हैपन, चिन्ना आएगा ना, चिन्ना उसका नहीं आएगा क्या, फुटप्रिंट नहीं आएगा उसके ऊपर, आएगा ना, आप सोचो जरा बराबर से क्या हो रहा है। गाय भी सोच रही है कि अभी तो सैंड इतना मुलायम बना दिया है, हमारा दूध उसमें गिरने वाला है बूंद बूंद, तो एकदम ऐसा वो गीला ठंडा होने वाला है, जब ये चलेंगे उसके ऊपर तो उनका फुटप्रिंट्स आएगा ना उसके ऊपर, पदचिन्ह आएगा ना उसके ऊपर, और पदचिन्ह में क्या क्या होता है, अंशु होता है, मछली का चिन्ह होता है, अंकुश होता है उसके अंदर, पद्म होता है, बहुत सारे चिन्ह होते हैं भगवान के चरण पर, हमारे पैर पर कुछ नहीं होता है, भगवान पे पैर पर ऑटोमेटिक जन्म से ही चिन्ह होते हैं, जो चिन्ह से हम पहचान देखिए भगवान है, कई प्रकार के चिन्ह, 26 प्रकार के चिन्ह होते हैं, बलराम जी के अलग है, कृष्ण के अलग है, राधा रानी के अलग है, हाथ के चिन्ह अलग है, पैर के चिन्ह अलग होते हैं। तो जब वो चिन्ह गिरेंगे तो हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग में से कोई उस पर पैर नहीं रखेगा, वी विल नॉट स्टेप ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्ण बलराम, वो सबसे आगे चलेंगे, हमारे लाखों गाय और हम सब लोग पीछे चलेंगे, कोई उसमें फुटप्रिंट्स नहीं है, पैर पे पैर रखेंगे नहीं उसके अंदर। अभी ये कैसे उन्होंने किया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतनी लाखों गाय जा रही है, आगे कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो सब लोग पीछे से आ रहे हैं ना सब लोग, लेकिन किसी ने भी कभी भी कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह पर पैर नहीं दिया, इसलिए ब्रज में कई जगह पर अभी भी कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह हैं, क्योंकि वो गाय ने बहुत संभाल के रखे थे। फिर वो चलते हैं, फिर फर्स्ट डे बहुत दूर जाते हैं तो कृष्णा थक जाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं है दूर जाने की, जब लौट के आने का समय होता है तो वो थक थक जाते हैं, तो सब फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, अरे अगर ये थका हुआ नज़र आएगा ना मम्मी को तो वो कल नहीं भेजेगी, बोले कि बहुत दूर जाता है ना अभी, कल छुट्टी लेना पड़ेगा। तो कैसे भी करके घर पहुंचने के समय ये हंसता हुआ दिखना चाहिए, तो वो आधे रास्ते पर जोक मारना शुरू कर देते हैं। हम लोग कैसे करते हैं प्रवचन में, जब प्रवचन आगे बढ़ता है तो सबको, तो एंड में प्रवचनकार जो होता है ना लेक्चरर, वो जोक मारना शुरू करता है, सब लोग हंसने लगते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है, उनका सांस भी ऊपर नीचे होता है ना हंसने से, फिर उनका नींद खुलता है, फिर वो सुनते हैं हाँ क्या बोला, ये क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग हंसे क्यों, क्या जोक कौन सा मारा सर ने, लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है, जोक क्या मारा बताओ। तो वैसे वो आधे रास्ते में आने के बाद में जोक मारना शुरू करते हैं, विनोद बोलना शुरू करते हैं, गीत गाना शुरू करते हैं, ताकि ये हंसता हुआ मम्मी डैडी को नजर आ जाए। उस तरह से फर्स्ट डे थके हुए कृष्ण को हंसते 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 गीत गाते विनोद बोलते 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 घर पहुंचाते हैं, और बड़े खुश होकर मैया के गोद में घुसते हैं, तो मैया बोलते हाँ बहुत बढ़िया हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, खाना थका नहीं, कल भी जाएगा। इस तरह से फर्स्ट डे जो गाय चराने का फर्स्ट डे फेस्टिवल है ना गोपाष्टमी का, वो कम्प्लीट हो जाता है। ऐसा सब सुंदर लीला होती है वहाँ पर। उस तरह से रोज भगवान गाय को लेके दूर दूर वन में जाते हैं, कभी धेनुकासुर को मारते हैं, कभी केशु को मार देते हैं वृंदावन में, धेनुकासुर को ताल वन में मार देते हैं, अरिष्टासुर को राधा कुंड के पास मार देते हैं, ऐसे ही अलग अलग डीमन को भी मारते हैं। दोपहर के टाइम पे डीमन आता है उसको मार देते हैं, नदी में स्नान करते हैं और जमुना किनारे में भोजन करने बैठ जाते हैं। मैंने आपको ब्रह्मा जी की और कृष्ण के भोजन की कहानी सुनाई थी, किसको याद है बताओ? हाँ हाँ, देखो वाले एक ही क्यों याद है, सब लोग सोच रहे क्या बताया क्या बताया, बताया था ना मैंने आपको। तो ब्रह्मा जी को कृष्ण का प्रसाद खाने की इच्छा होती है, जूठा, तो मछली बन के आते हैं, बोले मैं वो हाथ धोएंगे तो मैं खा लूँगा। वहाँ देखते हैं, अच्छा बड़ा होशियार बनाया, पानी लेते लोटे में से और ज़मीन में हाथ धोते। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला भगवान जमुना किनारे पे गऊ चराते हुए करते हैं। मेंढक बन के मेंढक बैठक बन के मेंढक मेंढक बन के पानी में कूदते हैं, फिर छलांग लगाते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ते हैं वहाँ से उठ कूद मारते हैं, अलग अलग पंछियों की आवाज़ करते हैं, फिर पंछी भी आवाज़ करता है, फिर वो भी आवाज़ करते हैं। इस तरह से हर जीव के साथ में रिस्पॉन्स प्रेम करते हुए भगवान गौचारण करते हैं, और गाय भी भगवान के गोल 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 घूमती रहती है सब जगह पे, सब जगह गाय की देखभाल करते हैं, अच्छा चारा मिल रहा है ना, फ्रेश ग्रास कहाँ मिल रहा है, कहाँ ठंडा पानी मिलेगा, भूख लगेगी तो फिर दूर दूर में जाते हैं ना, दूर दूर में तो लंच घर से आता है, जब जाते ना पास पास में बचपन में तो लंच साथ में मिलता था, साथ में लंच यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन स्पेशल लंच जो है वो गोपियाँ ढूंढते हुए आती है, आज कौन से वन में गए हैं, तो लंच पैकेट लेके आती है। लंच आएगा आने के बाद मेरे तुरंत स्नान करके गोल कमल की तरह बैठ जाते हैं, बीच में कृष्ण बैठते बलराम जी के साथ, फिर आठ सखा बैठते हैं, एट फ्रेंड्स, फिर उसके बाद और गोल, फिर और गोल करके कमलाकार सब लोग बैठ जाते हैं। सब लोग डब्बा खोलते हैं, ले लो ले लो ले लो, देखो मेरे मम्मी ने क्या बनाया, ये खा के देखो, ये बहुत मीठा है, ये बहुत अच्छा है, ये खा के देखो, फिर वो भी खिला रहा है, 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 फिर उसका जूठा ये खा रहा है, उसका जूठा ये खा रहा है, उसका जूठा वो खा रहा है। कृष्ण भी बोलते मेरी मैया ने बहुत अच्छा अच्छा दिया है, तो भी अपना भी बॉक्स खोलता है और वो भी उसको भी सबको खिलाता है, उसका भी आधा बलराम जी को, आधा सुदामा को, आधा उज्ज्वल को, आधा मधुमंगल को खिलाते खिलाते फिर बाद में खुद खाता है। भगवान है भगवान, लेकिन बालक बन के सबके साथ खेल रहा है। ये देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे भगवान है, वो भी एक लंबी कहानी है, अभी नहीं बताएंगे उसको। चुरा लेते हैं बछड़ों को सब ब्रह्मा जी, फिर पछताते हैं, फिर रोते हैं। ऐसा सुंदर स्थान है वो टेर कदम्बा। और आप गए थे पावन सरोवर ना, पावन सरोवर में एक दिन क्या हुआ, उसका नाम नंद सरोवर था पहले, नंद सरोवर, नंद महाराज का भी वो किंग है ना, उसका भी पौंड है बहुत सारे, तो उसका प्राइवेट पौंड है वो स्नान करने का, रोज़ सुबह स्नान करते हैं वहाँ पर मॉर्निंग। तो एक दिन माता जी कुछ खाना बना रही थी, फ्राई आइटम बना रही थी, मटरी, तो बोलते क्या बना रही हो, कभी देखा नहीं आपको बनाते हुए, बोले ये इसको मटरी बोलते हैं, मटरी, मटरी को बना रही हो, बोले बाबा त्रिवेणी में स्नान करने जाने वाले हैं। त्रिवेणी किधर है, किधर है, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद किधर है, बहुत दूर है यहाँ से, यूपी में है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीन नदी का वहाँ मिलन है, वहाँ पर स्नान करना बड़ा पवित्र माना गया है, तो बाबा अभी त्रिवेणी में बड़े बड़े लोगों को लेकर जाने वाले हैं। तो कृष्ण को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि ब्रिज को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर बाबा बाहर क्यों जा रहे हैं, वाई ही इज़ गोइंग आउटसाइड। तो फिर बाबा को मिलते, बाबा आप ना आज मत जाओ, आप कल जाओ, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, बड़ा अच्छा मुहूर्त होता है ना अक्षय तृतीया, वो पवित्र माना गया उसको, अक्षय तृतीया को कोई भी अच्छा काम करना अच्छा माना गया है। तो बाबा बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, अभी आज के बदले में कल जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो दिन द्वितीया होती है ना, सेकेंड डे ऑफ द मंथ, वैशाख की, तो रहते घर पे अपने, रोज रोज की तरह सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, जब स्नान करते हैं अपने कुंड में जाकर तो क्या देखते हैं, सुबह के समय एकदम 4 बजे के समय एकदम अंधेरा होता है उस समय, तो बड़ा लाइट गिरा हुआ उधर, बहुत लाइट गिरा है, तो क्या बात है, देखते हैं एक बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा राजा जो है मुकुट पहनकर राज वस्त्र पहना हुआ है, वो स्नान कर रहा है उधर उनके कुंड में नंद सरोवर में, पानी में जा रहा है, स्नान कर रहा है, फिर बाहर आ रहा है और ये किनारे में लोटपोट हो रहा है, इज़ रोलिंग इन द डस्ट, और फिर स्नान कर रहा है, फिर स्नान कर रहा है, फिर किनारे में आ रहा है, फिर रोल होके मट्टी में घूम के फिर वापस स्नान कर रहा है। आप लोग स्नान कैसे करते हो? एक बार स्नान करके मट्टी में जाते हो वापस क्या? नहीं ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों कर रहे? जाते महाराज प्रणाम, आप कौन है, आप कहाँ से आए? तो बोलते मैं त्रिवेणी संगम हूँ, खुद स्वयं त्रियम प्रयागराज हूँ, तीर्थराज प्रयाग। और अगर आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको बदबू नहीं आएगी, मुझे मालूम है बदबू आ रही है, लेकिन जब हमारा मन भगवान की कथा सुनने में मग्न होता है तो बदबू कुछ नहीं आती अपने को, मुझे नहीं आ रही है क्योंकि मैं कथा बोल रहा हूँ ना इसलिए। तो महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बोलते हैं कि साल में एक बार मैं यहाँ स्नान करने आता हूँ, साल के बाकी सारे दिन लोग मुझ में स्नान करते हैं, अपना सारा पाप छोड़ते हैं, और इतना पाप जमा होता है उस पाप को साफ करने के लिए मैं नंद सरोवर में आके स्नान करता हूँ। तो बाबा समझ गए कि जिसके पास स्नान करने मैं जाने वाला हूँ वो खुद मेरे कुंड में स्नान करने को आता है, इसलिए उसका नाम पड़ा पावन सरोवर। दुनिया भर के पाप नदी जितने नदियाँ हैं ना वो सब में स्नान करते हैं, सब लोग अपना पाप छोड़ते हैं उसके अंदर, वो सारी नदियाँ जो हैं वो पावन सरोवर में आके स्नान करती हैं साल में एक बार। एक दिन सीएल लेते हैं, सीएल कैजुअल लीव लेते हैं अपनी ड्यूटी से, और ब्रज में आते हैं और स्नान करते हैं, वापस अपने पाप से मुक्त होकर शुद्ध होकर अपना सेवा करने चले जाते हैं, फिर लोग आके साल भर स्नान करते हैं उसके अंदर। तो ये कथा है पावन सरोवर की। ये देखकर नंद बाबा ने गए क्या वो वापस? नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दिया, टिकट कैंसिल कर दिया, रिफंड ले लिया उन्होंने, नहीं जाना है अपने को, क्योंकि जहाँ पर मैं जाके स्नान करने वाला हूँ वही खुद यहाँ पर आके स्नान कर रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर स्नान करने के लिए, इसलिए उसका नाम पावन सरोवर पड़ा। जय जय श्री राधे श्याम।